चाहत आहान के साथ उसके घर पर ही थी। थोड़े टाइम बाद ही सही, पर उसने निशा की मौत को एक्सेप्ट कर लिया था। अब उसने ये स्वीकार कर लिया था, निशा अब कभी लौटकर नहीं आएगी। आहान ने चाहत को अपनी मॉम से मिलवाने की बात कही थी, इसीलिए वो बाथरूम में तैयार हो रही थी। नहाने के बाद चाहत अपने बाल सुखाने के लिए आईने के सामने खड़ी थी। उसने खुद के चेहरे को देखा तो वो काफी थकी हुई और उदास लग रही थी। चाहत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, आप यही चाहती थी ना, मैं हमेशा खुश रहूं और अपनी पढ़ाई पूरी करूं। आपके इलाज के चक्कर में मैंने कभी अपनी जिंदगी को वक्त नहीं दिया, इस बात का गिल्ट आपको हमेशा रहा है। मैं जीते जी आपको कोई खुशी नहीं दे पाई, लेकिन प्रॉमिस करती हूं आपके जाने के बाद आपकी हर एक ख्वाहिश को मैं पूरा करूंगी। चाहत की आंखें नम होने लगी थीं। उसने अपने आंसुओं को कंट्रोल किया, तभी उसे बाहर से आहान की आवाज़ सुनाई दी। आहान दरवाजे पर था और उसने दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, डॉल तुम पिछले एक घंटे से अंदर हो, डोंट टेल मी कि तुम अंदर बैठकर रो रही हो, जल्दी बाहर आओ। मैंने कहा था ना, आज मैं तुम्हें अपनी मॉम के पास लेकर जाना चाहता हूँ। आ रही हूँ आहान, बस दो मिनट दीजिए, चाहत ने जवाब दिया। फिर अचानक ही उसके दिल में ख्याल आया, आहान उसे अपनी मॉम से क्यों मिलवाना चाहता है? अक्सर कोई लड़का अपनी माँ से तभी मिलवाता है जब वो किसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हो। चाहत ने मन ही मन बड़बड़ाकर कहा, देखा जाए तो मैं अब तक आहान के साथ इसीलिए थी क्योंकि मुझे मम्मा का इलाज करवाना था। अब मम्मा ही नहीं रही तो मुझे आहान के साथ रहने की क्या जरूरत है? चाहत ने आहान की जिंदगी से दूर जाने का सोचा, तभी दरवाजे पर आहान की आवाज आई, देखो डॉल ये मत करो, तुम अंदर हो तो मुझे घबराहट हो रही है, तुम्हें और टाइम चाहिए तो मैं दे सकता हूँ, जानता हूँ तुम्हारी मॉम का अचानक चले जाना तुम एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो, तुम क्या मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है, तो प्लीज बाहर आ जाओ। आहान की बातों से साफ पता चल रहा था उसे चाहत की कितनी फिक्र है। चाहत ने उसकी बातें सुनने के बाद खुद से कहा, मैं इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हूँ, आहान ने मेरे पूरे टाइम मेरी हेल्प की है, आज भी मेरी ही फिक्र कर रहे हैं, उन्होंने मुझे हर्ट जरूर किया है लेकिन उस वक्त जब वो गुस्से में थे, बिना गुस्से के उन्होंने मेरी परवाही की है और बहुत ख्याल रखा है, मुझे भी उनके गुस्से को कम करके उन्हें ठीक करना होगा, जिस दिन मेरा काम हो जाएगा मैं चली जाऊंगी। कल तक चाहत ये सोच रही थी उसकी मम्मा के जाने के बाद उसकी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, लेकिन आज वो संभल चुकी थी। उसे जीना था, अपने लिए ना सही अपनी मम्मा के सपनों के लिए। तैयार होने के बाद चाहत बाहर आई। चाहत को देखकर आहान ने हल्की मुस्कुराहट दी। चाहत अपने मन में कोई सवाल नहीं रखना चाहती थी, इसीलिए उसने तुरंत पूछ लिया, हम आपकी मम्मा से क्यों मिलने जा रहे हैं आहान? क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, जिस दिन मुझे गुस्सा आया था और तुम मेरे घर पर आई थी उसका कारण यही था, किसी ने उनका एक्सीडेंट करवा दिया था और वो कोमा में थी, उनको होश काफी पहले आ गया था लेकिन निशा आंटी की मौत होने की वजह से मैं उनसे मिलने नहीं जा पाया, अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो तो सोचा तुम्हें साथ लेकर उन्हें देखाऊं। आहान ने बिना कुछ छुपाए सब कुछ चाहत को बता दिया। सारी बात जानकर चाहत एकटक आहान के चेहरे को देख रही थी। कुछ देर पहले वो आहान को छोड़कर जाने की बात सोच रही थी, फिर अगले ही पल उसे ये ख्याल आया वो आहान के ठीक होने के बाद उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन अब उसे कुछ और ही एहसास हो रहा था। उसके चक्कर में आहान अपनी खुद की मम्मा से मिलने नहीं गया और उसे संभाल रहा था, ये देखकर चाहत को मन ही मन गिल्ट फील होने लगा। चाहत को कुछ समझ नहीं आया तो उसने आहान को गले लगा लिया और उसे सहलाते हुए कहा, हम मिलकर हर एक प्रॉब्लम से लड़ लेंगे, चिंता मत कीजिए, मेरी मम्मा को हम नहीं बचा पाए पर आपकी मॉम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाहत की इस हरकत से आहान के फेस पर स्माइल आ गई। उसने चाहत को खुद में समेटते हुए कहा, हाँ हम सब देख लेंगे। बोलते हुए वो चाहत से अलग हो गया और आगे बोला, चलो अब नीचे जाकर आयुष को भी सब बताना होगा, उसे इस बारे में कुछ नहीं पता है। चाहत ने उसकी बात पर हामी भरी और आहान के साथ नीचे आ गई। आयुष ब्रेकफास्ट के लिए उनका वेट कर रहा था जबकि सनी सुबह उठते ही अपने काम पर चला गया था। आहान और चाहत को तैयार हुआ देखकर आयुष ने हैरानी जताते हुए पूछा, मुझे लगा आप दोनों आज का दिन घर पर ही बिताएंगे, लेकिन आप तो कहीं और ही जाने का प्लान कर रहे हैं। सिर्फ हम दोनों नहीं, तुम भी हमारे साथ चल रहे हो, आहान ने सीरियस फेस के साथ बताया। आहान की बात सुनकर आयुष को लगा वो कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसने एक्साइटेड होकर कहा, अच्छा तो आपने पिकनिक प्लान की है, अरे पहले बता देते तो मैं एक्स्ट्रा तैयारी करवा लेता। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं बाद में बता दूंगा, आहान ने शांति से जवाब दिया। वो अभी आयुष को कुछ बताना नहीं चाहता था। आयुष ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। ब्रेकफास्ट होने के बाद आहान ने आयुष को दवाइयाँ दी और फिर उसके बाद कहा, वो एक्चुअली कुछ दिनों पहले मॉम का एक्सीडेंट हो गया था और वो टेम्पररी कोमा में चली गई थी, कल उन्हें होश आ गया था लेकिन निशा आंटी की डेथ की वजह से मैं वहाँ नहीं जा पाया और अब हम वहीं जा रहे हैं। शिवानी के एक्सीडेंट का सुनकर आयुष को झटका सा लगा। एक पल के लिए तो उसे यकीन नहीं हुआ, फिर उसने गुस्से में कहा, मॉम का एक्सीडेंट हुआ है और आप मुझे अब बता रहे हैं? मैं घर पहुंचा था तब मुझे कुछ और ही सुनने को मिला था। हमारे घर के हाउस हेल्पर ने बताया था मॉम और डैड बाहर घूमने गए हैं। मॉम का एक्सीडेंट हुआ है तो फिर डैड कहाँ है? आयुष की मेडिकल कंडीशन के चलते आहान उसे सब सच नहीं बता सकता था। उसने धीरे से जवाब देते हुए कहा, वो किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हैं, उन्हें भी पूरी बात पता नहीं है। मैं नहीं चाहता वो अपने काम को बीच में छोड़कर यहाँ आए। मॉम की जिम्मेदारी मैं देख रहा हूँ। आयुष ने आगे कुछ नहीं कहा। वो आयुष से काफी सालों बाद मिला था। पिछली बार जब वो गया था तो आहान वो गुस्से वाला इंसान था जो किसी की परवाह नहीं करता था, और आज अपने फैमिली मेंबर की इतनी परवाह करते देख उसे दिल ही दिल उस पर प्राउड फील हो रहा था। आयुष ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर वो तीनों शिवानी से मिलने चले गए। विजय ओबेरॉय मुंबई में ही अपने किसी फार्म हाउस में छुपा हुआ था। उसने अपने सोर्सेस के जरिए दामिनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दो ही दिनों में उसकी हालत खराब हो गई थी। पहले जहां वो क्लीन शेव रहता था, अब उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी आई हुई थी। उसके कपड़ों में से शराब की बदबू आ रही थी। विजय ओबेरॉय गुस्से में जोर से चिल्लाकर बोला, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो आहान। तुमने मेरी कंपनी के सारे शेयर्स आयुष के नाम ट्रांसफर करवा दिए। तुमने मुझे रोड पर ला दिया है। मैं इसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा, पर सबसे पहले मुझे दामिनी और अपने बच्चे को बचाना होगा। मुझे सोचना होगा तुम उसे कहाँ रख सकते हो। विजय ओबेरॉय चहलकदमी करते हुए आहान की जगह के बारे में सोच रहा था। घूमते हुए अचानक उसके मन में कुछ स्ट्राइक हुआ तो उसने खुद से कहा, फार्म हाउस, तुम उसे जगह के बहुत क्लोज हो। वो तुम्हारी माँ को शादी के वक्त गिफ्ट में मिला था। शिवानी ने वो तुम्हारे नाम कर दिया था। तब से उस जगह पर तुमने किसी को नहीं आने दिया। कहीं तुमने दामिनी को वहीं तो नहीं रखा हुआ? फार्म हाउस का ख्याल आते ही विजय तुरंत वहीं पर जाने के लिए निकल गया। उसने जाने से पहले अपने कपड़े ठीक किया और चेहरे पर मास्क लगा लिया था।
वहाँ जाने से पहले उसने अपने साथ में एक गन ली और अपने सभी खास आदमियों को फोन करके वहाँ पर बुला लिया। अगर आहान ने उसे किडनैप करके वहाँ रखा था तो वो उसे बिना किसी सिक्योरिटी के तो रखने वाला नहीं था, इसलिए विजय ओबेरॉय कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। दामिनी आहान के फार्म हाउस में ही थी, लेकिन विजय इसका पता इतनी जल्दी लगा लेगा ये आहान तक ने नहीं सोचा था।